कहीं न कहीं रौनक अपने मन में सवाल जवाब कर रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान एकदम से वसुंधरा की ओर चला गया और वो सोचने लगी, वसुंधरा आंटी है ना, तो मुझे इतना बोर होने की क्या जरूरत, अब वसुंधरा आंटी मेरा एंटरटेनमेंट करेंगी। अब आगे ये सोचते हुए रौनक फटाफट सोफे पर बैठ गई और वसुंधरा जी को आवाज लगाई, वसुंधरा आंटी प्लीज आप मेरे लिए एक गिलास बादाम वाला दूध ले आए, मेरा बादाम वाला दूध पीने का मन कर रहा है। जैसे ही रौनक ने वसुंधरा को ऑर्डर दिया, वैसे ही अभिमान जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। जब भी वसुंधरा घर का काम किया करती थी या जब घर वाले वसुंधरा को नौकर की तरह ट्रीट किया करते थे, तभी अभिमान जी के चेहरे पर अजीब सी चमक दिखती थी। उन्हें वसुंधरा को घर का काम करते हुए देखना काफी अच्छा लगता था। वहीं वसुंधरा, जो कि घर में सभी घर वालों के सामने बहुत ही पोलाइट रहती थी और सब जैसा कहते थे वैसा ही करती थी, लेकिन वो अभिमान जी के सामने किसी तरह की कोई एक्टिंग नहीं करती थी। सीधे तरीके से वो अपने असली रूप के साथ बैठ जाती थी और जब भी मौका मिलता वो अभिमान जी को उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर देती थी। फिलहाल नानी माँ भी तुरंत ही रौनक के पास आकर बैठ गई और प्यार से बोली, रौनक बितिया, अच्छा हुआ तुम बादाम वाला दूध पी रही हो, हम तुम्हें कहने ही वाले थे कि अब तुम्हें अपनी डाइट में थोड़ा दूध और फल फ्रूट शामिल करना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तुम्हें ताकत की बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें अच्छी और हेल्दी चीजें खानी होंगी, ठीक है? हाँ, तुम यहाँ बैठो, हम तब तक तुम्हारे पैरों के लिए तेल लेकर आते हैं। रौनक ने उन्हें हंसते हुए मना किया, अरे नहीं नहीं नानी माँ, रहने दीजिए ना, मैं ठीक हूँ, आप आइए, हम थोड़ी देर बैठकर आपके गाँव के किस्सों के बारे में कुछ बात करते हैं। इतना सुनते ही नानी माँ तुरंत रौनक के पास बैठ गईं और खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। इस बीच अभिमान जी अपनी चीज़ों में बिजी थे और दादाजी गार्डन में वीर के साथ मिलकर गार्डन का काम करवा रहे थे। दादाजी ने सोचा कि क्यों ना गार्डन की थोड़ी साफ सफाई कर ली जाए, इसलिए वो वीर को लेकर सीधे गार्डन में चले आए और धीरे धीरे पेड़ पौधों में लगे कीड़े मकोड़ों पर दवाई छिड़कने लगे और बड़े बड़े पौधों की छांटाई करने लगे ताकि गार्डन की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। इतना बड़ा गार्डन देखकर वीर की तो हालत खराब हो रही थी, उसे लगा कि उसका ये बूढ़ा दादा उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसे सबकी नज़रों में अच्छा दिखना है तो सभी काम अच्छे तरीके से करने होंगे, इसलिए वीर ने सिर हिलाकर हामी भरी और चुपचाप सारे काम करने लगा। वहीं वसुंधरा का चेहरा रौनक को ग्लास देते हुए हल्का सा खिल उठा। रौनक को दूध देने के बाद नानी माँ ने उसे अभिमान जी के लिए भी दूध लाने के लिए बुलाया। जैसे ही वो अभिमान जी के पास आई, वैसे ही अभिमान जी ने तंज कसा, वसुंधरा तुम कामकाज करते हुए थोड़ी ठीक ठाक लगती हो। जैसे ही अभिमान जी ने वसुंधरा को टोंका तो वैसे ही वसुंधरा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए और वो अभिमान जी को गुस्से में देखकर भड़की, ओ तो तुम्हें मैं काम करते हुए अच्छी लगती हूँ, शायद तुम भूल रहे हो अभिमान कि पहले भी मैं तुम्हारे घर के सभी काम किया करती थी। वसुंधरा की इस बात पर अभिमान जी उसे गुस्से से घूरने लगे, फिर कड़वाहट से बोले, पहले तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है ये मत याद दिलाओ, जैसे तुमने काम किए थे ना वो याद आते ही मेरा मन सिर्फ तुम्हारा गला दबाने का करता है। अभिमान जी की आवाज़ में गुस्से को भांपते हुए वसुंधरा एकदम से चुप रह गई। वो उठी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। फिलहाल दूसरी ओर अरमान फार्म हाउस की ओर जा रहा था। अचानक उसने अपनी कार एक अनजान जगह पर रुकवाई और कुछ पल के लिए वो अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा, फिर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। कहीं ना कहीं वो यही सोच रहा था कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी यादें गई हैं जिसके बिना उसका दिल हमेशा भारी भारी सा लगता है। फिर वो गहरी सोच में डूब गया। चाहे उसकी जिंदगी की बीती हुई यादें वापस आईं या ना आए, लेकिन आस्था से जुड़ी सारी यादें उसे वापस चाहिए थीं, क्योंकि आस्था को देखकर उसका दिल जोर से धड़कता था। इतना ही नहीं, जब से उसने आस्था की कमर देखी है तब से उसे अपने शरीर में हारमोनियम सिस्टम में बदलाव महसूस हुआ। अरमान को ये सारी घटनाएं अजीब लग रही थी। उसने परेशान मन से सोचा कि आखिर उसके साथ ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं जो कभी भी उसकी जिंदगी में नहीं हुआ था। उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं लेकिन उसने आज तक किसी को आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन जब जब आस्था उसके करीब आती थी उसका दिल करता था कि वो उसके करीब जाए और उसे अपना बना ले, लेकिन फिर भी वो उसे देखते ही अपने इमोशंस पर काबू रखता था। इस वक्त अरमान के दिलो दिमाग में एक अलग तरह की जंग चल रही थी। उसने तंग आकर सोचा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसे किसी और लड़की का सहारा लेना होगा, लेकिन सबसे पहले उसे ये पता लगाना होगा कि उस लड़की आस्था को देखकर उसकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है जो उसे किसी और के साथ नहीं होती है। तभी उसके दिमाग में अपने दादाजी की उठपटांग बातें घूमने लगी। धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ रही है अरमान, तुम्हें इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे शादी करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब इंसान का अपना शरीर भी किसी और का साथ चाहता है। आज न जाने क्यों अरमान को दादाजी की कही हुई बातें याद आ गईं और वो बेचैन होकर सोचने लगा कि कहीं उस लड़की को इस तरह देखने की वजह उसके शरीर को उसकी आवश्यकता तो नहीं है, क्या पता उसका शरीर किसी लड़की के साथ समय बिताना चाहता हो। अरमान ने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी लड़की को इतनी अनुमति नहीं दी थी कि कोई भी उसकी जिंदगी में इतनी आसानी से आ सके, लेकिन अब आस्था के बारे में सोचकर तो वो अपने आप से एक अलग ही तरह की जंग लड़ रहा था। अरमान ने सोचा कि अगर आस्था उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है या फिर वो कोई घटिया चाल चल रही है तो उसे रोकने के लिए उसे किसी और लड़की का इस्तेमाल करना होगा। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम सूझा, संजना सिंह। इसलिए देर न करते हुए अरमान ने सोचा कि उसे सबसे पहले संजना से मिलना चाहिए, जो उसकी नई सेक्रेटरी थी। उसे संजना से मिलकर इस बारे में बात करनी होगी कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती है। अरमान के दिमाग में ये आइडिया आते ही वो तिरछी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो मिस एंग्री बर्ड। अरमान ने आस्था का नया नाम एंग्री बर्ड रखा था और साथ ही साथ वो उसे इरिटेटिंग गर्ल भी कहता था। अगर तुम वाकई मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारा प्लान पूरी तरह फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि अरमान सिंघानिया बहुत जल्द किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आएगा। भले ही वो लड़की कुछ समय के मेरी जिंदगी में दिखावे के लिए हो, लेकिन अब मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हें मेरे घर से बाहर निकालने में। ये सब सोचते हुए अरमान कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहा था। फिर वो फार्म हाउस जाने के बजाय सीधे अपने ऑफिस आ पहुंचता है। वहां उसने संजना को काम करते हुए देखा। संजना को देखकर उसके दिल में कोई जज्बात नहीं उठे, जो कि आस्था को देखकर उठते थे। फिलहाल उसने अपने दिमाग से ये ख्याल छटका और संजना को अपने कैबिन में बुलाया और सीधे तरीके से पूछा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर सकती हो? जैसे ही अरमान ने ये सवाल टोंका, संजना को ऐसा लगा मानो जैसे वो हवा में उड़ने लगी हो। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अरमान उसे बुलाकर सीधे ऐसे बात बोल देगा। अरमान के मुंह से ये शब्द सुनकर उसका चेहरा अजीब सा हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो आगे बढ़कर अरमान के होठों को छू ले, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है किसी कामयाब पावरफुल बिजनेसमैन को पाना, लेकिन संजना उनमें से नहीं थी।
फिलहाल संजना ने गहरी सांस भरकर परेशानी भरी आवाज में जवाब दिया, सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसने पहले अरमान को मना करने की कोशिश की, सर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी अरमान ने रोबदार आवाज में उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें ये काम फ्री में करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी तो मैं तुम्हें पूरे एक दिन के 1,00,000 रुपये दूंगा, बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? जैसे ही अरमान ने ये सवाल पूछा, संजना तुरंत उसका इशारा समझ गई और वो एकदम से बोली, सर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा कोई नाटक करूं तो मैं तैयार हूं। उसने पैसे लेने से भी साफ इनकार कर दिया। उसका जवाब सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया और वहां से जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने संजना से कहा, और हाँ, जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करूँ तब तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, और डोंट वरी, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। अरमान की इस बात पर संजना ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वहीं अरमान ऑफिस से फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। अरमान के वहां से जाने के बाद संजना के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुके थे। उसकी आंखों में हल्का हल्का जोश और एक्साइटमेंट नजर आने लगा। फिलहाल अरमान फार्म हाउस पहुंच चुका था। वहां उसने सबसे पहले सभी अपराधियों को इकट्ठा किया और उनकी धुलाई और पूछताछ शुरू की। उसने केवल उन सबसे एक ही सवाल किया, मुझ पर वायरस किसने इंजेक्ट किया? लेकिन सभी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अरमान ने जल्दी ही उनकी हिस्ट्री निकाली। अरमान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी अपराधियों की पूरी जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि वो किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देना चाहता था। अगर किसी ने कोई भी खतरनाक अपराध किया है तो उसे अरमान के हाथों से बेदर्दी से सज़ा मिलती थी। जैसे जैसे अरमान उनके अपराध की हिस्ट्री देख रहा था, वैसे वैसे उसका चेहरा कठोर होता जा रहा था। उसने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्क्रू ड्राइवर और पैंच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें दर्दनाक मौत दी। अरमान पूरी तरह खून में लिपटा हुआ था और वो बेहद खतरनाक डेविल जैसे रूप में दिखाई दे रहा था। तभी आहान और ध्रुव ने तुरंत अरमान को वॉशरूम में ले जाकर पानी डालकर साफ किया। अरमान को आज अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने आस्था को अपनी जिंदगी से बाहर भगाने का मन बना लिया था, इसीलिए वो संजना के साथ से नई प्लानिंग बना रहा था। थोड़ी देर बाद अच्छे से फ्रेश होने पर उसने मुस्कुराते हुए संजना को कॉल किया और उससे कहा कि आज रात को उसे डिनर करने के लिए सिंघानिया मेंशन में आना होगा। अरमान की बात सुनकर संजना मन ही मन खुशी से हवा में उछलने लगी। वहीं अब अरमान के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी और वो फटाफट सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर तब तक आस्था और वंशिका सीधे प्रोफेसर प्रशांत के पास जा पहुंचे। वहां जाकर प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वे अब तक कुल 20% भी वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाए हैं। ये सुनकर अगले ही पल आस्था काफी हद तक मायूस हो गई थी। वंशिका ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आश्वासन दिया, तुम्हें अभी इस सिचुएशन में शांत रहना होगा। अगर हमें इस वायरस का एंटीडोट बनाना है तो ये एंटीडोट इतनी आसानी से नहीं बनेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। तभी प्रोफेसर प्रशांत ने अचानक अपना बड़ा सा चश्मा उतारा और उसे एकदम शांत नजरों से देखते हुए कहा, आस्था बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। भले ही हम इस वायरस का एंटीडोट बना लें, पर मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से कामयाब होगा। अगर हम इस एंटीडोट को अरमान के शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो मुझे कन्फर्म नहीं है कि उसकी कितनी यादें वापस आएंगी या फिर उसकी पूरी यादें ही गायब हो जाएंगी। लेकिन अभी हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर राजवीर ने ये काम किया है तो उसके पीछे ज़रूर उसका कोई बड़ा मकसद होगा, और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक अरमान की यादें वापस नहीं आएंगी। इसीलिए क्यों ना तुम सबसे पहले राजवीर से ही मिलो और उसके ही साथ डील करो, और जो कुछ भी वो तुमसे चाहता है तुम उसे वो दे दो। हो सकता है उसके बाद वो तुम्हारे पति की यादें तुम्हें लौटा दे। प्रोफेसर प्रशांत की ये बात सुनकर आस्था ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। जब भी राजवीर का नाम आता है उसके सर की नसें तन जाती हैं। उसने गहरी सांस भरी और एकदम से प्रोफेसर साहब की ओर देखकर बोली, प्रोफेसर साहब, मुझे उस इंसान का नाम लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, और रही बात अरमान जी की यादों की तो मैं उन्हें वापस ला कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे राजवीर के डार्क विला में जाकर उसके बनाए हुए एंटीडोट को क्यों ना चुराना पड़े। आस्था का आत्मविश्वास देखते ही वंशिका ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। वंशिका ने तुरंत प्रोफेसर की ओर देखकर कहा, सर, जब हमें सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वायरस का एंटीडोट जरूर बना लेंगे। हमें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपनी मेहनत लगातार जारी रखनी होगी। वंशिका का कॉन्फिडेंस देखकर प्रोफेसर प्रशांत ने वंशिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है बेटी, तुम हमेशा इसी तरह की सोच रखोगी और इस मकसद में कामयाब भी होगी। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वायरस का एंटीडोट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिक्र मत करो, हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। फिलहाल मेरे मन में राजवीर को लेकर जो भी ख्याल आया वो मैंने आप दोनों को बता दिया। अब आप लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि राजवीर कहाँ है। मुझे लगता है वो किसी प्लानिंग के तहत चल रहा है। सबसे पहले वो कुछ दिन अरमान सिंघानिया को तड़पाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो आस्था को भी तड़पाना चाहता है, और जब उसे लगेगा कि तुम लोग अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हो और पूरी तरह उसकी मौत के मोहताज हो चुके हो, तब वो तुम सबके सामने आएगा। अभी राजवीर ने खुद को छुपा कर रखा हुआ है तो कोई चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, इसीलिए अब तुम्हें उसे खोजने की बजाय सिर्फ उसके सामने आने का इंतजार करना होगा।